الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرت رئیس الجامعہ حضرات اساتذہ کرام میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ تعالی کی عظیم نعمت پاکستان پر اللہ تبارک و تعالی کے حضور شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہیں. آج سے 69 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر انتہائی نامساعد حالات میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب ملک محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. ایک ایسے موقع پر عطا فرمایا جب غیر اسلامی طاقتیں اس بات پر پورا زور صرف کر رہی تھی کہ یہ ملک وجود میں نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے مسلمانہ نے برے صغیر کی مدد فرمائی اور دنیا کے نقشے پر پہلی بار ایک ایسی ریاست کا وجود قائم ہوا جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی. ابھی آپ نے وہ دلاویز ترانہ سنا جس میں جو 1944 میں یعنی پاکستان بننے سے 3 سال پہلے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا اور اس کا ہر بند اس جملے پر ختم ہو رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمیں اب اس منظر کو دیکھنے والے تو بہت کم رہ گئے ہیں لیکن ہمیں اب بھی اپنے بچپن کی وہ فضا یاد ہے جبکہ ہندوستان کی فضاؤں میں یہ نعرے گونجا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ نعرے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے ان عزائم میں برکت عطا فرمائی اور یہ ملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا. یوں تو انسان کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے بعد اس کو اپنے وطن سے وفادار ہونا چاہیے. جس وطن میں وہ رہ رہا ہے، جہاں کی نعمتوں سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا وفادار رہے. لیکن ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا، جو صرف اور صرف اس بنیاد پر قائم ہوا کہ اسلام کفر سے الگ ایک ملت ہے اور وہی इस कौम की इज्तिमाई वहदत का एक बुनियाद है। इस बुनियाद पर जो मुल्क कायम हुआ है उसके साथ वफादारी और उसके साथ मोहब्बत और उसकी तामीर और तरक्की की कोशिश, ये सिर्फ एक वतन का हक नहीं है बल्कि इस्लाम का, दीन का एक फरीजा है और उसके अंदर एक अजीम तकद्दस शामिल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तलबा ने जो मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ दर्जा से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने पाकिस्तान के साथ इस मोहब्बत का मुजाहरा मुख्तलिफ उनवानात से पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला के करम से बड़े दिलचस्प और कामयाब मुजाहरे हमारे सामने पेश किए गए। मैं उन तलबा को भी और जिन हजरात ने इन मुजाहरों का इन तकरीबात और इन प्रोग्रामों का एहतमाम किया उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसे अच्छे मुजाहरों और प्रोग्राम तरतीब देने की तौफीक अता फरमाई। एक बात जो हमें इस मौके पर याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले पहले ही से उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू हो गई थी। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पहले तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे की मुहिम फिक्री एतबार से भी शुरू की गई और ये नारे भी लगाए गए कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा तो एक नाकाम मुल्क होगा, एक नाकाम रियासत होगी। ये नारे लगाए जाते थे भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान। और यह हमने बचपन में अपनी आंखों से देखा कि जब हम अपने वालिद माजिद मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान इंडिया की सरहद पर जो कस्टम की चौकी कायम थी वो आने वालों के सामान में जो कोई बेसिला कपड़ा देखती थी उसको जब्त कर लेती थी। यानी जो मुसलमान वहां से अपना सरमाया लेकर जा रहे हैं तो उनके सरमाए को जब्त करने के लिए, और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि मैं जो किताबें लेकर आया था वो किसी तरह महफूज पहुंच जाए, लेकिन उन लोगों का हाल यह था कि उनको किताबों से कोई सरोकार नहीं था, उनको इस बात से सरोकार था कि कपड़ा पाकिस्तान न जा सके। और उनका यह नारा कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, ये आंखों से लोगों को दिखाया जा सके। लेकिन यह अल्लाह जल्ला जलालहू का फजल व करम था कि पाकिस्तान बना वो सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद और सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया और इस हालत में बनाया जबकि बेवसीला मुल्क था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास दफ्तरों में बैठकर काम करने के आलात नहीं थे, बबूल के कांटों से बालपिन का काम लिया जाता था और दफातर खुली हुई बैरिकों के अंदर दफातर कायम किए गए थे। इस तरह ये मुल्क वजूद में आया लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने फजल व करम से इसको अपने इनामात से नवाजा और वो नारा के भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, वो नारा अल्हम्दुलिल्लाह दफन हो गया और इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडे की मुहिम है जो मुसलमानों में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बुराइयों पर मुश्तमिल जुमले लोगों के नोके जबान पर रहते हैं। पाकिस्तान में यह हो गया, पाकिस्तान में फला खराबी पैदा हो गई, फला नुकसान हो गया। और अजीब मामला है कि खुद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या पाकिस्तान से जो बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हुए हैं वो
पाकिस्तान की बुराइयां करते नहीं थकते कि फला पाकिस्तान में घरानी है, पाकिस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान माल आबरू महफूज नहीं है। ये जुमले बकसरत लोगों की जबानों पर आते रहते हैं और मजलिसें इससे गर्म की जाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद उन तमाम खराबियों और बदअनवानियों के जो हम आज मुल्क में देख रहे हैं, बावजूद इन तमाम नुकसानात के जिनका जो हमने उठाए हैं, उसके बावजूद आज भी मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कहता हूं कि पूरे दुनिया के नक्शे में इतना ज्यादा मुसलमान, इतना ज्यादा मुस्तहकम और इतना ज्यादा मुफीद मुल्क मुसलमानों के लिए कोई और नहीं है जितना पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया के बड़े बड़े तमाम ममालिक का सफर किया है और इस्लामी मुल्कों में तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें जाने का इत्तेफाक ना हुआ हो, जिसको करीब से ना देखा हो, जिसके हालात का जायजा ना लिया हो। लेकिन इन सब हालात का जायजा लेने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई मुसलमान मुल्क मुसलमानों के लिए इतना अजीम, इतना नेमत, इतनी बड़ी नेमत और इतना बड़ा फायदे वाला कोई और मुल्क नहीं है जितना पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मालिक बहुत से हैं, लेकिन ये एहसास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है जो उसकी बुनियाद में, उसका जो बुनियादी दस्तूर है उसमें अल्लाह के लजालू की हाकिमियत को अपने दस्तूर का सबसे बुनियादी पत्थर करार दिया। ये बात आपको तमाम मुसलमान ममालिक में से किसी मुल्क में नहीं मिलेगी, यहां तक के सऊदी अरब में भी क्योंकि कोई दस्तूर नहीं है, लिहाजा उसके अंदर भी ये इस तस्रीह के साथ ये बात मौजूद नहीं है कि हाकिमियत आला अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है और इस मुल्क में जो हुकूमत को कायम होगी वो अल्लाह तबारक व तआला की हाकिमियत के इकरार के मातहत, अल्लाह तआला की हाकिमियत के एतराफ के मातहत और उसके उसी के अहकाम के मातहत कायम होगी। ये एजाज और किसी मुल्क को हासिल नहीं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को अता फरमाया। ये एजाज भी किसी और मुल्क को हासिल नहीं है कि जिसमें ये वजाहत के साथ ये बात तय की गई हो कि पाकिस्तान के में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा और मौजूदा कवानीन को कुरान और सुन्नत के ढांचे में तब्दील किया जाएगा, इस तरह के साथ कोई किसी मुल्क में ये दफा मौजूद नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दस्तूर के अंदर इस बात की सराहत मौजूद है कि हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो अगर किसी कानून को कुरान और सुन्नत के खिलाफ देखे तो वो अदालत के जरिए उसको खत्म कराए और उसकी जगह इस्लामी कानून को लाने का दावा करे, और अदालत अगर उसके दावे को कबूल करे तो अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि कानून को फस कर दे और मनसूख करके उसकी जगह इस्लामी कानून को नाफिज़ करने का हुक्म जारी करे। अफसोस है कि इस अजीम दफा को जो पाकिस्तान के दस्तूर में मौजूद है, हुकूमत और अवाम, और मैं कहूंगा कि अफसोस है कि दीनी हलकों की बेहिसी की वजह से यह दफा मुअत्तल पड़ी हुई है और इससे सही फायदा नहीं उठाया जा सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है। आज भी अगर हम इस बात का तहिया कर लें कि इस दफा को बरसरकार लाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रास्ता खुला हुआ मौजूद है। लिहाजा जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम को लाने के लिए हथियार उठाए बगैर कोई और चारा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है और झूठा है और पुरअमन तरीके पर इस्लाम के कवानीन को नाफिज करने का अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मौजूद है। शर्त यह है कि हम अपनी बेहिगी खत्म करें और शऊर पैदा करें और शऊर पैदा करके इस दफा को बरूए कार लाने का एहतमाम करें। मैं 17 साल इस वफाकी शरीय अदालत और सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच में काम करता रहा हूं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 से ज्यादा कवानीन अदालत के जरिए इस्लामी सांचे में ढालने का हुक्म जारी किया और हुक्म और वो कवानीन बदले गए। लेकिन अफसोस है कि हमारी हमारे दीनी हलकों की तरफ से इस दबा से फायदा उठाने के लिए कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। मैंने हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की कि आप खुदा के लिए इस फायदा उठाने के लिए ये दरखास्तें दायर करें, मगर अफसोस है कि कोई दरखास्त दायर हमारी तरफ से नहीं हुई। बेटियों की तरफ से आई, मुल्हिदीन की तरफ से आई और उस पर फैसले दिए गए और 200 के करीब कवानीन उस जमाने में हमने बदले। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को याद हासिल है कि उसमें हर शहरी को यह हक दिया गया है कि वो कुरान सुन्नत की बुनियाद पर किसी कानून को चैलेंज करके तब्दील करा सके। आज कहा जाता है कि मुल्क में गरानी है, लेकिन अगर आप दूसरे दुनिया के मुल्कों से मुकाबला करके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर और तकरीर की आजादी के लिहाज से अगर आप देखें तो किसी भी इस्लामी मुल्क में, मुसलमान मुल्क में तहरीर और तकरीर की वो आजादी नहीं है कि आदमी अपने जमीर के मुताबिक जिस तरह चाहे उसको इजहार राय कर सके। पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों के नतीजे में लोगों के गले घुटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत यहां पर अता फरमाई। तो मेरे भाइयों और अजीजों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने जो ये नेमत अता फरमाई है, पहले उस नेमत की कदर तो करो, उस नेमत को नेमत तो समझो, और इस गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इसका शुक्र अदा करो कि उसने ये नेमत अता फरमाई। और उस शुक्र का एक अहम हिस्सा यह है कि इस मुल्क में मायूसी फैलाने के बजाय उम्मीद के चराग रोशन करो और अब इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हर शख्स जो जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता है वो अपना किरदार अदा करे और ये समझे कि मैं जब इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूं तो वो मुल्क की खिदमत दरहकीकत इस्लाम की खिदमत है और इस्लाम की खिदमत एक अजीम सदका जारिया है जो उसके लिए जिंदगी भर उसके लिए सवाब का सबब बनेगा। लिहाजा जो शख्स जिस शोबे जिंदगी में है वो इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ और मुल्क की हमदर्दी और मुल्क के साथ जज्बे हुब्बुल वतन के साथ जब ये काम करेगा तो इंशाअल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इसको पिछले फितनों से बचाया है उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम दारुल उलूम के अंदर पहले दिन से, क्योंकि हमारे वाले जो माजिद बानी दारुल उलूम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कद्दस अल्लाह ताला सिर्रहू उन हजरात में से थे जिन्होंने इस मुल्क की के क्याम में न सिर्फ जिद्दोजहद की बल्कि अजीम कुर्बानियां दी। और पाकिस्तान बनने के बाद ये जो मैं आपको दस्तूर की दफात बता रहा हूं, जिस करारदाद मकासिद के तहत ये दस्तूर की दफात वजूद में आई उसको मंजूर कराने में शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे वालिद माजिद हजरत मौलाना ज़फर अहमद साहब उस्मानी और दूसरे उलमाए किराम का बड़ा अहम हिस्सा था। इसलिए उन्होंने दारुल उलूम कराची जो कायम किया वो महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी कि जिस तरह और मदरसे कायम होते हैं तो दारुल उलूम भी उसी तरह कायम हो जाए, बल्कि दरहकीकत दारुल उलूम कराची को कायम करने के पीछे एक अजीम मकसद था। और वो मकसद ये था कि इस दारुल उलूम के जरिए ऐसे अफराद तैयार किए जाए जो मिल्लत की रहनुमाई कर सके और उसमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन के उलूम भी पढ़ाए जाए और उसके साथ साथ ऐसे लोग भी तैयार किए जाए कि जो उलूम असरिया के अंदर महारत रखते हों और हर शोबे जिंदगी में इस मुल्क की खिदमत कर सके। हजरत वालिद माजिद कद्दस अल्लाह तआला सिर्रहू का ये एक आरजू थी, उनकी तमन्ना थी, कोशिश की जा रही है दारुल उलूम कराची के अंदर के हजरत वाला के کی آرزو، ان کی تمنا اور ان کے عزائم اور مقاصد کے تحت اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے. الحمدللہ اسی لیے دارالعلوم کے اندر الحمدللہ ان مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ سارے ہر قسم کے شعبے قائم کیے گئے ہیں جو حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سرہ کے پیش نظر تھے. آج کے اس مظاہرے میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں ہمارے درس نظامی کے طلبہ بھی ہیں، اس میں مدرسہ ابتدائیہ ثانویہ کے طلبہ بھی ہیں، اس میں ہرا فاؤنڈیشن کے طلبہ بھی ہیں، اور اسی وقت ساتھ ساتھ مدرسہ البنات کے اندر خواتین اور طالبات کا اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پر پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں وہ کردار ادا کر سکیں جو ہم سے مطلوب ہے. الحمدللہ اس موقع پر مجھے یہ خوشخبری دینے میں بھی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ کل ہی الحمدللہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول جس میں او لیول کی پہلی بار او لیول کے بچوں کا امتحان دلوایا گیا، تو اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ 100% آیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ 100% بلکہ 50% اس میں جس کو گریڈ اے کہا جاتا ہے یعنی عالیہ درجہ سب سے اونچا درجہ، اس میں 50% کامیاب ہوئے ہیں، اور کسی کا بھی درجہ مقبول تک نہیں پہنچا بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ جید یا جید جدن تک ہے، اس سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ ہمارے سارے شعبوں میں درس نظامی کی وفاق کا امتحان ہوا، تو اس کے اندر الحمدللہ دارالعلوم کے اندر دارالعلوم نے شاید سب سے زیادہ پوزیشنیں حاصل کی، اور اسی طرح مدرسہ ابتدائیہ اور ثانویہ کے جب امتحانات ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس مدرسہ ابتدائیہ اور ثانویہ کے نتائج بھی دوسرے اسکولوں سے ممتاز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری بزرگوں کی دعاؤں سے یہ کام اس طرح چل رہا ہے، اور ہمیں آج اس موقع پر جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پاکستان کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہے، یہ عزم تازہ کرنا چاہیے کہ ہر شعبے میں جہاں بھی ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے پوری کوششیں صرف کریں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ سمجھنا کہ جب ایک ادارہ یا ایک شخص معاشرے کی اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہے، یہ محض شیطان کا دھوکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک چراغ جلتا ہے تو چراغ سے چراغ جلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے. تو ہمیں پورے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ان تمام کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر رکھے اور ہم بھٹکنے نہ پائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کو ترقی اور استحکام سے نوازے، اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. www.darsquran.com